अब इसके बाद की जो दो आयतें इकट्ठी आ रही हैं उसका पहले समझ लीजिए, फिर मैं आयत पढ़ूंगी ताकि आपका वक्त कम लगे। यहूद ने दो एतराज किए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आदत भी थी और कभी कभी वो बात का बतंगड़ भी बनाते थे। एतराज क्या था? कहते थे कि देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को दीन इब्राहिमी के पैरोकार समझते हैं, ठीक है ना, आपने फरमाया कि हम दीन इब्राहिमी पे हैं और ऊंट का गोश्त भी खाते हैं, जबकि ऊंट का गोश्त और इसका दूध तो दीन इब्राहिमी में हराम था। यानी अगर आप तौरात खोल के देखें ना, तो तौरात में ऊंट का गोश्त हराम है, जैसे आज हमारे यहाँ हलाल है ना, वहां हराम था। तो कहते थे फिर आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन से कैसे ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने यहाँ बताया कि यहूद का ये दावा गलत है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन में ये चीजें हराम नहीं थी, बल्कि ये जब भी हमने आयत पढ़ी ना, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु, यहां बड़ी खूबसूरत बात है, इन दोनों आयतों में रब्त भी है। पहले दौर में क्या होता था कि जो चीज आपको पसंद है ना उसको छोड़ दो, तर्क के ख्वाहिश जो थी ना वो नेकी थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जिनको इसराइल के नाम से जानते हैं लोग, उनको ऊंट का गोश्त बहुत पसंद था और दूध भी पसंद था, उन्होंने अल्लाह की रजा पाने के लिए उसको हराम कर दिया। जैसे आज कुछ लोग कहते हैं ना, अच्छा अगर ये हो गया तो मैं ये काम नहीं करूंगी, अच्छा मुझे मिसाल है चावल पसंद है तो फिर मैं चावल खाना छोड़ दूंगी। हाँ, इस तरह से ये तो हजरत याकूब का एक अपना फेल था, लेकिन जो लोग बुजुर्गों के साथ ताल्लुक जोड़ते हुए इतने जुड़ जाते हैं कि वो शख्सियत परस्ती में आते हैं, इन्होंने तौरात के असल हुक्म को बदल दिया और इसके जगह पे क्या किया, अपनी मर्जी का दीन पैदा कर दिया। तो इसका जवाब अभी आ रहा है इन आयतों में कि ऊंट का गोश्त और दूध तौरात में भी हराम नहीं था, ये एक नजर मानी हुई थी, बस कहते हैं बीमारी की वजह से था, ये हो गया। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात कि हजरत याकूब कब थे, तौरात पहले उतरी कि हजरत याकूब पहले, तो तौरात तो उससे बाद में नाजिल हुई, बात समझ गए, तौरात के नजूल से पहले का हुक्म था। तौरात तो हजरत इब्राहिम और याकूब के बहुत बाद नाजिल हुई, तो फिर ये कैसे दावा कर सकते हो। लिहाजा ये बात समझ आ गई, सूरत अलनाम आयत 46 और निसा 160 में भी ये बात मिलेगी कि असल में कौमों को उनकी सरकशी की वजह से पकड़ लिया जाता है, और यही कहा जा रहा है कि इनको लाके सुना दो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में ये चीजें हराम नहीं थी, बास चीजें हराम की गई ज्यादतियों की वजह से। दूसरा एतराज अगली आयत में आ रहा है, वो क्या था, यहूद कहते हैं कि बैतुल मुकद्दस पहले बनाया गया इबादत की खातिर और खाना काबा बाद में, तो फिर मुसलमानों ने यानी नबी सल्लम और आपके साथी ने किबले को क्यों बदल लिया। तो उसके जवाब में फरमाया कि तुम्हारा ये दावा भी गलत है, पहला घर जो अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया गया वो कौन सा, मक्का में। अब इस तनाजर में अगली दो आयतों का तर्जमा सुनिएगा, कुल्लु तामिकान अहलल लिबनी इसराइल आयत 93, खाने की सब चीजें जो शरीयत मोहम्मदी में हलाल हैं, बनी इसराइल के लिए भी हलाल थी, बात वाज़े, ये अपनी मर्जी से हराम किया गया था, अल्लाह ने नहीं कहा था। हाँ मगर इल्ला मा हर्रम इसराइल वला नफ्सिही, सिवाय इन चीजों के जिन्हें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हराम ठहरा दिया अपने नफ्स पे, मिन कबल अन तुनज्जलत तौरात, इससे पहले कि तौरात नाजिल हो गई, बात समझ आ गई, क्लियर है बात। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का अपना अमल था, तौरात से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एक दफा अपनी बीवियों की दिलजोई की खातिर शहद ना खाने की कसम खाई थी, तो आयत क्या नाजिल हो गई, सूरह तहरीम की आयत नंबर 1, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दात अज़वाजिक, क्या नबी आप वो चीजें हराम क्यों करते हैं जो आपके ऊपर अल्लाह तआला ने हलाल की, क्या अपनी बीवियों की खुशी चाहते हैं। तो इस सारे हिस्से से क्या पता चला कि नबियों का जाती फेल भी हुज्जत नहीं होता, अल्लाह ताला ने जो चीज हलाल कर दी वो हलाल है, जो हराम कर दी वो हराम है। साथ ही दलील मांगी कि कुल फातु बित्तौरात फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन, कह दीजिए कि ले आओ तौरात को और पढ़ो इसको अगर तुम अपने एतराज में सच्चे हो। किस एतराज में, कि ऊंट का गोश्त हराम है, पूरी तौरात में कहीं भी ऊंट का गोश्त हराम नहीं है, लिहाजा आयत 94 में इस पे तबसरा है, फमनिफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा, जो कोई झूठ बांधे अल्लाह पर, मिन बादी ज़ालिका, इसके बाद, फौलाइका हुमुस ज़ालिमून, वही लोग ज़ालिम हैं, यही वो लोग हैं जो जुल्म करते हैं। قل صدق اللہ, کہہ دیجئے جو فرمایا اللہ نے وہ سچ ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. وما کان من المشرکین, وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. سمجھ آ رہی کہ کسی کے ذاتی عمل کو نہ دیکھو بلکہ اوور آل ملت ابراہیمی کو دیکھو. اب آپ دیکھیے کہ یہاں تک پہلا ایشو ختم ہوا. خلاصہ کر دو, یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو اعتراض کیے. ایک اعتراض کیا تھا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی حضرت ابراہیم کے دین پہ ہیں تو آپ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے کھلاتے ہیں اور دودھ کیوں پیتے ہیں. اس کا جواب آگے ابھی تک ہمارے سامنے کہ کلو تام اکانا ہل نلی بنی اسرائیل. یہاں جو لفظ تام آیا نا اس کو سمجھیے گا, تو عین میم, تم کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو چبانا پڑے, اس کے مقابلے میں شراب ہوتا ہے. جس چیز کو چبانا پڑے وہ تام ہے, اور گیہوں اور کھجور کو بھی عرب لوگ تام کہتے تھے. ہر وہ چیز جو کھائی جائے, ایڈیبل تھنگ کہہ لیجیے, جس سے جسم کی گروتھ ہو سکے. پینے والی چیز بس منہ میں ڈالی پی لی, لیکن کھانے والی چیز جس کو چبا کے کھانا پڑے. مراد ادھر اوور آل ہر وہ چیز ہے جو کہ جسم کا حصہ بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کانا ہلن, ہل کا لفظ کیوں آیا ادھر؟ ہا لام لام اس کا روٹ ہے. ہلا یا ہلو کہتے ہیں گرا کھولنے کو, ان نوٹ کرنا, گرے لگی ہوتی ہیں نا ان کو کھولنا پڑتا ہے. اسی طرح جب کسی جمی ہوئی چیز کو پگھلایا جائے تو اسے ہلن کہتے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ برف حل ہو گئی پانی میں, چینی حل ہو گئی, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سخت چیز جو ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے, یعنی اپنی جگہ سے دوسری جگہ چلی گئی. اسی سے یہاں ہلن سے کیا مراد کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ نے حلال کہہ دیا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے. اصل الاشیاء واحد, عربی میں کہتے ہیں چیزیں اپنی اصل سے حلال ہے, ہاں مگر جس کے اوپر کوئی آ جائے بات کہ اس کو حرام کرنا ہے یا حلال کرنا ہے. تو بہرحال یہاں ہلن کا معنی آپ کے لیے کلیئر ہے, آگے بھی آئے گا تو اس کی مزید باتیں آپ کو بتاؤں گی. ہاں مگر لی بنی اسرائیل ما حرما, حرما کے لفظ ہے, حرامیم حریما حرما حرمت مسجد حرام, یہ وہی لفظ ہے, کسی چیز کو روکنے کے لیے آتا ہے. لکھیں یہ آپ کو اس سے معنی سمجھ آئے گا, اس چیز کو اس تک پہنچنے نہ دینا, شدت کے ساتھ روکنا اور ممانعت کرنا. حلال کی ضد ہے یہ. حلال کیا تھا؟ کھولنا. حرام کیا ہے؟ بند کرنا. رسیاں کھول کر رکاوٹ اور بندش کا دور کر دینا. اسی سے پھر احرام کی حالت بھی ہے جو حاجیوں کی ہوتی ہے, احرم الحاج. حاجی اس حالت میں پہنچ گیا جس پر اس پر کئی چیزیں ممنوع ہو گئیں جس کو وہ کرنا چاہتا تھا, اسی سے پھر حالت احرام بھی ہو گئی. پھر اب دیکھیں یہاں حرام کا سمجھ آ گیا کہ جس کو اللہ نے بند کیا وہ حرام ہے, اتنا ہی بہت ہے, اس سے زیادہ ہمیں ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی. پھر اسرائیل کا لفظ پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی, اسرا اور ایل, اللہ کا بندہ, اسی سے یہ قوم پوری چلی تھی جن کی قصے ہم نے پیچھے بھی بہت پڑھی تھی. اور یہاں ایک اور بات بھی نوٹ کیجئے گا کہ یہ ساری باتیں کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کا یقین دلا دیا کہ ہمارا دین دلیل کا دین ہے. کسی کی زبانی سنی سنائی باتوں سے بات نہیں بنے گی, اصل بات یہ ہے کہ تم اپنے کام کرو. اور سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ان خرابیوں کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ ان کے اوپر, یعنی وَلَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ, کہ ان لوگوں کی نافرمانیاں جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی بنایا, اس کی سزا میں ہم نے ان پر ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا, اور گائیوں اور بکریوں میں سے ان کی جو چربیاں اس کو بھی حرام کیا. تو اسے ایک اور بات بھی نوٹ کیجئے گا, جب قومیں اپنی مرضی کرنے لگتی ہیں اور اللہ کے دین کی بات کو یا اللہ کی کتاب کو ایکسرسائز بک بنا لیتی ہیں تو پھر اللہ دین کو مشکل کرتا ہے. آج بھی دیکھیں مسلمانوں میں, یقین کریں دین اتنا سادہ اور آسان ہے, لیکن لوگوں کے فتووں دوسروں کی کہانیوں نے اس کو خراب کر دیا, مشکل کر دیا. اسی لیے یہاں ڈانٹا گیا ہے, فمن افترا, جس نے جھوٹ باندھا. یہ جو افترا کا لفظ ہے یہ نیا لفظ ہے, نوٹ کریے, بہت ہی خوبصورت لفظ ہے. کیا روٹ ہوگا ذرا سب بولیں گے؟ افترا کا روٹ بولیے. تا کہاں چلی گئی؟ دیکھیے تا روٹ کی نہیں ہے, باب افتعال کی ہے. فرا یا ہوتا ہے, الفرا کہتے ہیں کھال یا کپڑے کو کاٹنا یا پھاڑنا, درست کرنا اور سینا. अल इफराक कहते हैं इसे खराब करने के लिए फाड़ना। कभी आपने देखा है कि दर्जी कपड़े काटते हैं तो काटने में खतरा होता है कि कपड़ा खराब हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इफ्तरा क्या चीज है? फसाद, खराबी। छोटा कट गया, बड़ा कट गया। शिर्क, झूठ और जुल्म, इन तीन मानों में ये कुराने पाक में इस्तेमाल हुआ है। परी यू कहते हैं घड़ी भी बनावटी बात को, अजीब और हैरत अंगेज बात को भी कहते हैं, अजीब और गरीब बात जिस पे हैरत हो। तो यहां इफ्तरा करके कजिब झूठ बात क्या बता दी गई कि जो बंदा ऐसी बातें करता है वो अल्लाह पे झूठ बांधता है। अब मैं जरा सा आपका शऊर बेदार करूं, ये क्या बड़ी बातें थी? ऊंट का गोश्त हलाल करना, इट्स ओके, नहीं तो नहीं। वो ज्यादा बड़े झूठ थे या जो आज लोग दीने इस्लाम पे अमल के दौरान इस्लाम पे बोलते हैं? सहाबा कराम ने कभी वो रस्में वो मौके मनाए ही नहीं जो आज उम्मत मनाती है। जिस दिन उस घर में रोना पड़ा हुआ था, दुख था, गम था, उस दिन आज लोग ईदें मनाते हैं। इससे बड़ा इफ्तरा कोई होगा? तो इस इफ्तरा बर्दाजी से रोकने के लिए जरूरत क्या है? दीन को आम करने की। इसीलिए अगली आयत पे चलिएगा, आयत नंबर 95। कुल, कह दीजिए, सदकल्लाह, सच फरमाया अल्लाह ने। यानी तुम जो कहते हो ये झूठ है, जो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं वो सच है। फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, बस पैरवी करो मिल्लत इब्राहीम की जो यकसू थे। दो तरह से इसका तर्जमा होगा, यकसू कौन थे? इब्राहीम। दूसरा तर्जमा लिखिएगा, बस पैरवी करो मिल्लत इब्राहिमी की यकसू होकर। बी फोकस्ड। वो शेर तुम पे फिट ना आ जाए जो अल्लामा इकबाल ने आज से 200 साल पहले बोला था कि वजा में हो तुम नसारा और कता में हो हनूद, तुम वो मुसलमान के जिनको देख कर शर्माए यहूद। यानी आज देखिए फोकस्ड नहीं हम, मान लीजिए कि हम फोकस्ड नहीं हैं, इसीलिए परेशान है। जो पूरे का पूरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है फिर वो जिंदगी में मुतमईन होता है। वमा कान मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकों में से नहीं थे। अगर हनीफन के लफ्ज को देखिए, पहला तर्जमा जो आपके सामने किया है कि अगर इब्राहिम की सिफत मानी जाए, यह हाल है बेसिकली, तो अगर इसे इत्तबियू का हाल माना जाए तो हनीफीन होगा। यानी इब्राहिम जो हनीफ थे, तुम उनका तरीका अपना लो या फिर तुम सारे हनीफ हो जाओ। और उनका तरीका ये था कि वो मुशरिकीन नहीं थे। कभी आपको रश्क आता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे? कौन सी नेकी है जिसके बाद इब्राहिम का तस्करा ना आता? बात याकूब की हो रही है, बात दूसरों की होती है, बीच में मिसाल अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम की देता है। हमें भी तो अल्लाह ऐसी तौफीक दे कुछ करने की कि कल हर बात में हमारा नाम आ जाए जो अच्छी हो, और बुरी से हमारी नाम निकल जाए। और देखिए कुछ शख्सियात भी मशहूर हो जाती हैं, ये है ही ऐसे, ये हमेशा नेकी पहले कर जाते हैं। इनको तो अल्लाह ने ज्यादा ही तौफीक दी हुई है। ये नहीं होता कि माल ज्यादा होता है, दिल ज्यादा होता है, या जरूरतें कम होती हैं। देखिए तीन ही सूरतें हैं, माल बहुत ज्यादा, जरूरतें बहुत ज्यादा, हमेशा ही थोड़े रहेंगे आप। दूसरी सूरत है कि माल थोड़ा, जरूरतें ज्यादा, तो भी आप कमजोर रहेंगे। तीसरी सूरत इससे ऑपोजिट खुद ही समझ ले। असल बात यह है कि जिसको अल्लाह ने तौफीक दे दी। और ये जो हजरत याकूब की बात है, इसके बारे में एक रिवायत सुन लीजिए, मुस्तदरिक हाकिम की, हजरत अब्बास से, तिर्मिजी में अब्बास से है, और उसके अलावा मुस्नद अहमद और मुख्तलिफ किताबों में आप कह लीजिए कि ये रिवायत है कि यहूद ने नबी सल्लम से कहा, मुझे बताइए कि याकूब ने अपने लिए किस चीज को हराम किया था? तो आपने फरमाया, वो बादिया यानी जंगल में रहते थे, इन्हें इरकुन निसा की बीमारी हुई। ये कोई बीमारी होती होगी, तो बतौर इलाज उनको यही समझ आया कि ऊंट का गोश्त और दूध छोड़ दें, चुनाचे उन्होंने इसे अपने ऊपर हराम बना लिया। यहूद ने कहा कि आपने सच कहा। तो क्या पता चला कि उनके छोड़ने के पीछे कोई ना कोई रीजन थी। तो आज मैं और आप अपनी खुशी से ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला मुझे आपको नबियों के मिशन और उनके तरीकों से मोहब्बत दे, ना कि ये कि अल्लाह के नबी को कद्दू बड़ा पसंद था तो वो कद्दू कद्दू शरीफ हो गए, सर पे दुपट्टा ले के खाना है क्योंकि कद्दू शरीफ खा रहे हैं हम। ऐसे भी मुसलमान हैं आज लोग, खाने पीने की सुन्नतों पर बात करते हैं, अमल की नहीं। तो एक सीरीज चलाई थी तो मैंने सोचा कि सबसे शेयर करूं कि किस तरीके से वो सुन्नतें जो आज हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ही नहीं। हमें याद है तो दाढ़ी याद है, मीठा खाना याद है, हलवा खाना याद है, और चंद और ऐसी सूरतें। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें हर हाल में हर तरीके से दीन पे रखे। ये जो लफ्ज है ना मिल्लत, ये बड़ा खूबसूरत है, पीछे भी आया है, लेकिन कभी भी समझ नहीं आती इस लफ्ज की कि ये ता किधर से आ गई। तो जरा सा आज इसको मजीद गौर करते हैं। मीम लाम लाम इसका रूट है। उर्दू में आपने कभी लफ्ज सुना है इमला? इमला कराना, डिक्टेशन, यही लफ्ज है। मिल्लत क्या होती है? वो चीज जो नबियों ने लिखवाई। इमला के लफ्ज के साथ इसको जोड़ लीजिए, भरना मानी भी होता है। तरीकुल मलील कहते हैं वासे रास्ते को जिसपे बहुत आमदो रफ्त हो। फिर इसी से रस मला भी है, सरदार जिनके रोब से दिल भरे होते हैं। तो मिल्लत को मिल्लत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी ने खुद नहीं की होती बल्कि नबियों ने लिखाई होती है। फिर मलाल उर्दू में आप लफ्ज बोलते हैं, हाय बड़ा मलाल है। उस थकन और दिल बर्दाश्तगी को कहते हैं जो किसी काम को मुसलसल करने से पैदा हो जाए, जिसको हम कहते हैं हाय हम बोर हो गए, उकता गए। और इमलाक को भी इमलाल इसलिए कहते हैं कि जब कोई लिखाता है तो लोग बोर होने लगते हैं, थकने लगते हैं। तो यहाँ कहा कि ये तो मिल्लत इब्राहिम है। और इसमें सिर्फ नमाज रोजा नहीं आता, तरीका जिंदगी, लाइफ स्टाइल। यहां तक पहला सवाल पूरा हुआ। अब दूसरे सवाल का जवाब, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का। बेशक पहला घर जो लोगों के लिए रखा गया, ये वुदिया का लफ्ज पहले पढ़ा कहीं? वज़ह हमल यदाउ दुआ, इसका रूट होगा कि जो पहला घर लोगों के लिए अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया था वो कौन सा था? लल्लज़ी बिबक्का, वो तो मक्का में है। बक्का और मक्का एक ही लफ्ज के दो तलफ़ुज़ हैं, दो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। बक्का क्या है? मक्का। वुदिया के लफ्ज को समझ लीजिए तो वदा से किसी चीज को हाथ से गिराकर नीचे रखना। वुदियल किताब फतरुल मुजरिमीना, ये लफ्ज सूरत कहफ में भी आप पढ़ेंगे। वदो सियाब कहते हैं कपड़े उतार के रख देना। वदानान का वितरक सूरत दोहा में आप पढ़ेंगे, हटा देना गिरा देना। यहां क्या मतलब है? वो दिया जैसे ऊपर से रखा गया। मैं जब इस लफ्ज को पढ़ती हूँ तो मेरे जहन में एक फीलिंग आती है कि वो दिया लिन्नासी भी बक्का, जो मुकर्रर किया गया मक्का में लोगों के लिए। बस जहन में आता है कि पूरा आसमान से खाना काबा बना के ला के इधर फिट कर दिया गया, वल्लाहु आलम। लेकिन इशारा है खाना काबा के बनाए जाने की तरफ। बक्का को देखिएगा, बा काफ काफ, मक्का और बक्का एक ही लफ्ज है। दोनों का बहुत फर्क है मानी, अगर आप गौर करें ना। लफ्ज बक्का चूंकि यहां आया तो इसको समझ लेते हैं। बक्का कहते हैं धक्के को, जैसे मुक्का होता है ना वैसे ही बक्का होता है। बक्का वो चीज है, जगह है जो बड़े बड़े सरकशों को तोड़ देती है। गर्दन तोड़ने को कहते हैं बक्का उनका हो, उसने उसकी गर्दन तोड़ दी। मक्का मुकरमा में जाकर बड़े बड़े सरकश झुके हैं। बास कहते हैं वहां हजूम बहुत होता है तो धक्के पड़ते हैं, इसलिए इसको बक्का कहते हैं। बास कहते हैं यहां सरकशों और जालिमों की गर्दन टूट जाती है। और बास कहते हैं कि ये बक्का असल में मक्का ही है। और मक्का को मक्का क्यों कहते हैं ये आगे जाके बताऊं तो बेहतर है मेरा ख्याल है। मक्का जो है ना लफ्ज भी बड़ा खूबसूरत है, मीम काफ काफ इसका रूट होता है। मक्कल अज़्म कहते हैं हड्डी को इस तरह चूस लिया कि इसका गूदा साफ कर दिया। ऊंटनी के बच्चे ने वो तमाम दूध चूस लिया जो इसकी माँ के थन में था। इसके लिए अरब लोग बोलते हैं मक्कल फसील माफी दर उम्मी ही। तो मक्का हु उसने उसको हलाक किया, कम किया। मक्का क्यों कहते हैं हरम को? क्योंकि ये गुनाहों को खत्म कर देता है। यहाँ जाने से अल्लाह ताला गुनाह को माफ कर देते हैं। दूसरी इसकी वजह यह कि शहर में पानी बहुत कम था तो यहाँ के बाशिंदे पानी को चूसते थे, गीली मट्टी में से चूसते थे, इसलिए भी मक्का कहते हैं सकिंग के मानों में। फिर इसी तरह मक्कुन का मानी होता है जज्ब करना, खींच के आने का भी है। चूंकि ये शहर लोगों को अपनी तरफ खींचता है और जज्ब करता है इसलिए मक्का कहते हैं। फिर इसी तरह बक्कुन की तरह मक्कुन रश को कहते हैं, इज्तिहाम को, चूंकि लोगों का रश होता है इसीलिए। तो बहरहाल ये कुछ लफ्ज थे बक्का के, लेकिन पता क्या चला कि पहला घर खाना काबा था, बैतुल मुकद्दस नहीं था। क्या खूबियां इस घर की, जरा इसको एक एक करके गिन ले अभी से। नंबर एक, मुबारकन, बरकत वाला। क्या बरकत है खाना काबा में? ये सारी शरीयत जो आपने मक्की सूरतों की पढ़ी ये मक्का से नाजिल हुई। और अगर कहें तो पैगाम इस्लाम का मक्का से शुरू हुआ, तो पूरा कुरान ही मक्का का बरकत है। बाद में मदीना में भी गए तो मक्का का असर तो कायम रहा। यानी अल्लाह किसी जगह को अपने पैगाम के लिए चुन ले तो वो जगह बबरकत हो जाती है। उस वक्त भी तो इर्द गिर्द इतनी फर्टाइल ज़मीनें थीं, ताइफ था, रोम और यमन और इतने बड़े बड़े मुल्क थे, कहीं और आ जाता दीन। यहाँ से पता चलता है कि बंजर और वीरान जगहों से अल्लाह दीन का काम शुरू करवा देता है। फिर खुदा दूसरी खूबी, हिदायत लिल आलमीन, सारे जहानों की हिदायत का मरकज़। تیسری خوبی آیت 97 میں فی آیاتم بینات، اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں. مقام و ابراہیم، جیسے مقام ابراہیم، یعنی پہلی چیز برکت والا، دوسری چیز خدا للعالمین، تیسری چیز اس میں آیاتم بینات، اور چوتھی چیز مقام و ابراہیم، کھڑے ہونے کی جگہ. اگلی چیز ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ تو امن والا ہو گیا. چار خوبیوں کا تذکرہ کر کے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کریں اس کے گھر کا. من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی اس سفر کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اور اگر طاقت ہونے کے باوجود نہ کرے، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے. کفر کے لفظ کو نوٹ کیا آپ نے؟ جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے اس کا کفر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نہ حج کیا، نہ ارادہ ہوا، نہ دل میں کچھ خیال آیا، اللہ کو بالکل پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، کیونکہ ان کے ادیان میں حج نہیں تھا. اگر آپ اتنی آیتوں میں، کیونکہ اب آخری حصہ جو سبق کا شروع ہوگا وہ بڑا تکھا سا ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ واقعی دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں پہ کتنا غصہ آتا ہے جو اس کے دین کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں. یہاں یہ بات کر کے بتا دیا کہ ملت ابراہیمی ہی اصل میں امت مسلمہ کی صورت میں سامنے آ رہی ہے. اور ابراہیم کا طریقہ قربانیوں والا تھا، آپ کے طور طریقے اسلام والے تھے، تسلیم و رضا تھی، جس کام کا اللہ نے حکم دیا وہ آپ نے کر لیا. اور ابراہیم کا طریقہ توحید والا تھا، اللہ کی بات مانتے تھے. اس لیے ہم سب کو بھی حضرت ابراہیم کو رول ماڈل بنانا ہے. پھر اسی طرح سے یہاں لفظ حضرت ابراہیم کے لیے استعمال ہوا ہے حنیف، جنیف کا اپوزٹ ہے، یکسو، اپنا رخ ایک طرف کرنے والا. آپ میں سے کس نے سورج مکھی کا پھول دیکھا ہے لگا ہوا؟ کیا خوبی ہے اس کی؟ سورج کی طرف منہ پھیرتا ہے، اس کو حنیفیت کہتے ہیں. جدھر بھی ہوں خیال تیری طرف لگا ہوا ہے. شادی کی محفل میں یا غم کی جگہ پہ ہوں، بازار میں ہوں کہ مسجد میں ہوں، اے میرے مالک میرا دل تیرے ساتھ لگا ہوا ہے. یکسو، فوکسڈ، صرف اللہ سے امید ماننے والے، صرف اس پہ بھروسہ کرنے والے، صرف اسی کو اپنا سب کچھ بنانے والے. سخت سوال کیجیے اپنے آپ سے، مشکل ہے، کیا میں حنیف ہوں؟ 3 سیکنڈ دیتی ہوں، جواب ڈھونڈنے خود لکھیں. زندگی کے کس کس معاملے میں حنیف ہوں اور کس میں جنیف ہوں، سوچنا پڑے گا. پھر آپ دیکھیے کہ جو مکہ کے بارے میں یہاں 5 صفات خانہ کعبہ کی بیان کی گئیں، پہلا گھر، برکت والا، ہدایت والا. اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری باتیں آج ہم جا کے دیکھتے ہیں. ہدایت وہاں سے نکلی تو اس کو ہدایت کا سورس کہہ دیا، آیات بینات ہیں. 40 کے قریب کہتے ہیں کہ اس میں آیات بینات ہے، جس میں زمزم بھی ہے اور کوہ صفا بھی ہے، اور اس کے مختلف جو ریچول ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے. جو وہاں چلا جائے اس کے لیے امن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سامنے رکھ کے ہم سب کو بتا دیا کہ خانہ کعبہ پہلا تھا، بیت المقدس پہلا نہیں تھا. بخاری کی روایت ہے ابو ذر سے، کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول، روئے زمین پر کون سی مسجد پہلے بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام. میں نے پوچھا پھر کون سی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصا. میں نے پوچھا دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ کہا 40 سال. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ ابراہیم نے بیت اللہ کو بنایا، اس کے 40 سال بعد حضرت یعقوب نے مسجد اقصا کو بنایا. سوال پیدا ہوتا ہے بیت اللہ کی تعمیر کے مقاصد کیا تھے؟ تو 5 مقاصد ہمیں اس آیت سے ملے. نمبر 1، اللہ کی عبادت کی جائے، طواف کرنے، عبادت کرنے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے خاص کر دیا جائے، امن اور سلامتی کی جگہ رہے، لوگوں کے لیے قبلہ رہے، ہدایت اور رہنمائی کا مرکز بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا حج کرنے کی توفیق دے، اور وہاں جو نشانی ہے، زمزم کا کنواں، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا اور مروہ ہے، ہر ایک کے پیچھے ایک کہانی ہے، محبتوں اور قربانیوں کا سفر ہے. اصل میں یہ سب کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رغبت دلاتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس پہ عمل کیا تھا ابراہیم نے، آج تک ان کا نام زندہ ہے. आज तुम अपनी मनपसंद चीजें अल्लाह के रास्तों में लगाओगे, कल आने वाले वक्त तुम्हें भी याद रखेंगे, तुम्हें हरे भी सदका जारिया होंगे। और ये जो मकामो इब्राहिम है, ये वो पत्थर है जिस पे खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना कामा तामीर किया था, आज की तरह ये पत्थर सहने हरम में मुलतजिम के बिल्कुल सामने सोने के केज में है। और अल्लाह ताला ने इसको निशानी बना के खड़ा कर दिया कि जो मेरे रास्तों में खड़ा होगा मैं उसके कदमों के निशान भी जमा दूंगा। कभी देखें आपने कितने गहरे कदम है इब्राहिम के, ऐसे लगता है जैसे मोम को पिघलाकर उसमें किसी ने पाँव के स्टेप्स रखे हो, पत्थर पिघल जाते हैं एक इस्तकामत वाले के कदमों के निशान से। हम तो पता नहीं किधर रुल खुल गए, अल्लाह ही हमारी आज की बिखरी उम्मत को सीधा कर दे। आयात बैनात, अल्लाह ने बता दिया कि मैं अपनी तरफ आने वालों के कदमों की भी कदर करता हूँ, और ये वो चीजें हैं जो आज उम्मत को चाहिए। आज अपने बच्चों को लेकर इब्राहिम की तरह निकलिए, और इस्माइल जो आज आपके साथ है उन सब को भी अल्लाह के कामों में शामिल करें। आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद आपके सदके जारियां हों? जिंदगी में अपनी औलाद के लिए कुछ कर जाए। मसलन एक बात यहां जहन में आई है तो शेयर कर दूं, आप कहते हैं हमारे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, वो तो अपनी दुनिया में अब लग गए हैं, हाँ नमाजें पढ़ लेते हैं। ऐसे ही ना हमारे अमूमी माशरे का हाल, नमाजें पढ़ लेते हैं, रोजे रख लेते हैं, हम इसको ही बड़ा नेक कहते हैं, अब क्या करें? देखिए एक होता है नमाज पढ़ना, वो तो आपने अपने लिए पढ़ी, रोजा रखा अपने लिए रखा, ना रखा तो क्या होगा, मार पड़ेगी, इस्लाम मशकूक है। एक ये दुआ जो होती है ना कि अल्लाह मेरी नस्लों से खैर का पैगाम दे, वो कैसे होगा? सीधा सा दो तरीके हैं इसके, औलाद बड़ी होगी ना, अब औलाद के रिश्ते करते वक्त इस उसूल को रखें। बेटी के लिए बेटा जो मिलना है, वो इंजीनियर है कि नहीं, वो सीए है नहीं, वो डॉक्टर है नहीं, लेकिन अगर वो दाई दीन हो ना, साथ इस्लाम की खिदमत करता हो ना, तो मैं अपनी बेटी उनको दे दूंगी, रोटी रोजी अल्लाह देगा, और अल्लाह भूखा नहीं रखता किसी को भी। बहू लानी है, मैं वो लाऊंगी जो अल्लाह के दीन का काम करेगी। एक होता अपने लिए नमाज पढ़ना, वो क्या बड़ी बात है, हम भी पढ़ेंगे आप भी पढ़ेंगे, बट असल कहानी क्या है, दीन को सर्व करने लगी। एक पहली सूरत है आज हमारी, अपने घरों में वो लोग लाइए जो आपके घर का माहौल बदले। और इससे ऑपोजिट क्या होता है, अल्लाह रहम करे कोई ऐसी बीवी मिल गई आपके बेटे को, वो आपके आपकी तरबियत का असर भी कम कर देगी, या आपकी बेटी को ऐसा ससुराल मिल गया कि जिन्होंने वैसे ही पाबंदी लगा देनी है, ये ना करना वो ना करना, आज हम रिश्तों में नाकाम है। दूसरी सूरत है पोते पोतियां, नवासे नवासियां, उनको मांगिए अल्लाह के लिए, किन्नी नजर तुलक माफी वथनी वहर्रा फतकबल मिन्नी। ये दो रास्ते हैं आज के दौर में आने वाले वक्त के लिए अपनी नस्लों को तैयार करना। खुशकिस्मत है वो लोग जिनकी नस्लों में पीछे लोग दीन के काम कर रहे हैं। हदीस में आता है कि मरने वाले का मुकाम मुसलसल बुलंद किया ही जाता है जन्नत में। वो पूछता है अब क्यों, अब क्या हो गया, तेरे बच्चे ने नेकी की है, तेरे बच्चे की दुआ से हुआ। तो अल्लाह ताला हम सबको इस चीज पे अमल करने वाला बना दे, और अमन चैन सुकून सब कुछ है। खाना काबा में असलहा नहीं उठा सकते, हराम है। सही मुस्लिम की रिवायत है कि इसमें असलहा उठाना हलाल ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा थोड़ी देर के लिए जायज हुआ था फतेह मक्का के मौके पे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। फिर इसी तरह हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि बैतुल्ला पनाह चाहने वाले को पनाह देता है, लेकिन जगह और खाना पीना नहीं देता। आखिरी चीज जो इन आयतों में अभी तक पढ़ी है ना, वलिल्लाहि अला नासि हज्जुल बैत, इसमें समझ लीजिए कि हज करने की पांच शरायत है। लिख लीजिए, हज किस पे फर्ज है और किस पे फर्ज नहीं है। पहली बात यह कि हज फर्ज है, इस्लाम के पांच अरकान में से एक रुकन है, जिंदगी में एक बार करना फर्ज है, ये कर ले तो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। किसी ने आपसे पूछा था कि अल्लाह के नबी हर साल फर्ज है, तो आप खामोश रहे, फिर पूछा तो आपने डांटा कि अगर इसके कहने पे मैं कह देता हर साल फर्ज है तो सब पे फर्ज हो जाता हर साल और तुम इसको कर ना सकते। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 3257। फिर इसी तरह हसन कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने यह आयत तिलावत की, वलिल्लाहि अला नासि हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। सहाबा ने पूछा ये सबील क्या है, रास्ते से क्या मुराद है, तो आपने फरमाया ज़ादे राह और सवारी, यानी पीछे वालों के लिए भी सामान छोड़ो, साथ लेके भी जाओ और सवारी भी हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हम सबको फराइज को पूरा करने वाला बनाए। अच्छा बेटियां जवान हो तो हज फर्ज नहीं ना होता, ये भी मैंने सुना है, बेटियां शादी के काबिल है फिर हम पे हज फर्ज नहीं है, बेटों की जॉब लगनी है हज फर्ज नहीं, देखिए बेटी जवान है शादी के काबिल है तो उसपे भी हज हो गया फर्ज, आप उसको भी ले दें। शादी में जहेज ना दें कुछ नहीं होगा, हज करवा दें अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को शादी से पहले, बाद में पता नहीं क्या मसले होंगे उनके साथ। मुसनद सईद बिन मंसूर में है कि फारूक आजम ने फरमाया यानी उमर ने, मेरा मकसद है कि मैं लोगों को मुख्तलिफ शहरों में भेजूं, वो देखें जो लोग बावजूद माल रखने के हज ना करते हों। अगला जुमला सुनिएगा, आज कितने लोग हैं शहर में भी के जो करोड़ों में खेल रहे हैं, जमीनों के पलंदों के पलंदे उनके नाम पे हैं, पर हज ना करें। क्या कहते थे उमर फारूक, मैं क्या करूं, इन पर जिजिया लगा दूं क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। ये तफसीर मराघी की रिवायत है जिल्द 2 की वॉल्यूम 9 में, देख लीजिए। अल्लाह अकबर, इस पे अपने रिश्तेदारों को एहसास दिलाने की। बेटी बड़ी हुई है तो हम 10 सवाल पूछेंगे, रिश्ता नहीं किया, शादी नहीं की, बेटे की कब कर रहे हो, आपसे सवाल शुरू कर दें, आपने हज कर लिए, बच्चों ने कर लिए, ये सोचने की बातें। मुसनद की एक रिवायत में आपने फरमाया, फर्ज हज जल्दी कर लिया करो वरना क्या मालूम कल क्या पेश आएगा। अबू दाऊद वगैरह में कि हज का इरादा करने वाला जल्द अपना इरादा पूरा कर ले, नहीं करेंगे तो फिर कुफर। क्यों भाई, आखिरी बात, वजह मकासिद क्या हज के। पहली बात है कि अल्लाह के घर और उसकी निशानियों को देखकर अल्लाह से कुर पैदा होता है, फिर लब्बई की पुकार पे गुलामी का सबक याद आता है, इय्याका नाबुदु। तीसरा फायदा होता है कि दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से सब मुसलमान जमा होते हैं तो वाहदत पैदा होती है, यूनिवर्सल फैमिली बन जाती है, फिर मसावात, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और इयास, सब एक जैसे, बादशाह भी है तो दूसरा भी है। फिर हरम की पाबंदियों से यह पैगाम मिलता है कि इंसान को दुनिया में रहकर पाबंद जिंदगी गुजारनी है, और इंसानियत को अमन दीन इस्लाम के सिवा किसी निजाम से नहीं मिलता। और तवाफ, खाना काबा के तवाफ ये बताते हैं कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी सारी जिंदगी है मेरे मालिक तेरे हुक्मों के गिर्द घूमती है, वरना तो वो तो बेनियाज है ही। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें ये भूले हुए सबक याद दिला दे। यहाँ पे सबक का एक पूरा हिस्सा कंप्लीट हुआ, आखिरी हिस्सा जो उसमें अहले किताब से जो बात चलेगी वो अगले सबक तक चलेगी।
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني